ಮಾಧವ ಕೊಂಡರಿ
ಪರಿಪಾತ್ರ
भवान्यन्मानुपृच्छति दुष्टं निशाम्य पितरा लोकानां प्रपितामह देवर्षि परिपप्रश्च भवान्यन्मानुपृच्छति दुष्टं निशाम्य पितरा लोकानां प्रपितामह देवर्षि परिपप्रश्च भवान्यन्मानुपृच्छति तुष्टां प्रसन्ना निशाम्यां देखकर पितरां पिता को लोकानां संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रपितामह परदादा देवर्षि नारद ऋषि ने परिपप्रश्च पूछा भवान तुम यत् चो मा मुझसे अनुपृच्छति पूछ रहे हो। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से है। जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है तो उन्होंने भी अपने पिता से विस्तार में यही पूछा। तात्पर्य किसी सिद्ध महात्मा से आध्यात्मिक या दिव्य ज्ञान को समझने की विधि पाठशाला के शिक्षक से कोई सामान्य प्रश्न पूछने जैसे नहीं है। आजकल शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने के एवज में धन दिया जाता है किंतु गुरु वेतन भोगी नहीं होता, नहीं वो बिना अधिकार के शिक्षा दे सकता है। भगवत गीता में दिव्य ज्ञान को समझने की विधि का निर्देश इस प्रकार से है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्जुन को सलाह दी गई थी कि वो किसी सिद्ध पुरुष से समर्पण प्रश्न तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करे। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना डॉलरों के विनिमय जैसा व्यापार नहीं है। ऐसा ज्ञान गुरु की सेवा करके प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा ने भगवान को पूरी तरह तुष्ट करके उनसे प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार गुरु को प्रसन्न करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। गुरु की तुष्टि से ही दिव्य ज्ञान आत्मसात होता है। केवल वैयाकरण बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता। वेदों की घोषणा है श्वेताश्वतर उपनिषद, यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु दश्यते कथिता प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी अडिग भक्ति भगवान तथा गुरु में होती है उसे ही दिव्य ज्ञान स्वतः प्राप्त होता है। शिष्य तथा गुरु का ऐसा संबंध शाश्वत है। आज जो शिष्य है वही आगे चलकर गुरु बनेगा और जब तक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन नहीं करता तब तक वो प्रामाणिक तथा वैध गुरु नहीं बन सकता। ब्रह्मा जी ने भगवान से शिष्य रूप में वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया और इसे अपने प्रिय शिष्य नारद को प्रदान किया। इसी प्रकार नारद ने गुरु के रूप में यह ज्ञान व्यास को हस्तांतरित किया और आगे भी ऐसा ही हुआ। अतः तथा कथित औपचारिक गुरु तथा शिष्य ब्रह्मा तथा नारद अथवा नारद तथा व्यास के प्रतिरूप नहीं हो सकते। ब्रह्मा तथा नारद का संबंध एक वास्तविक सत्य थी किंतु ठग तथा ठगे जाने वाले का संबंध तथा कथित औपचारिकता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि नारद न केवल शिष्ट विनीत तथा आज्ञाकारी थे वरना वे आत्म संयमी भी थे। जो आत्म संयमी नहीं है विशिष्ट या कामी जीवन में, वह न तो शिष्य बन सकता है न गुरु। मनुष्य को वाणी, क्रोध, जीव, मन, उदर, कामेंद्रियों पर संयम रखने की अनुशासनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जो उपर्युक्त विशिष्ट इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है वो गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी हुए बिना न तो कोई शिष्य बन सकता है न गुरु। इंद्रिय संयम के बिना तथा कथित गुरु निश्चय ही ठग है, वंचक है और उसका शिष्य वंचित है। हमें इस लोक के अनुभव की तरह ब्रह्मा जी को मृत प्रपितामह नहीं समझना चाहिए। वे सबसे बड़े प्रपितामह हैं और अब भी जीवित हैं, नारद भी जीवित हैं। भगवत गीता में ब्रह्म लोक के निवासियों की आयु का उल्लेख है। एक क्षुद्र पृथ्वी लोकवासी मुश्किल से ब्रह्मा के एक दिन की अवधि की गणना कर सकते हैं। ओम ज्ञान तिमिरान्तस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदार्थिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपां सहगजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे।
तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिपप्लश्च भवान् यन्मानो पृच्छति। जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो उन्होंने भी अपने पिता से विस्तार में यही पूछा। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो अध्याय है, हाँ, जिसका शीर्षक है भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो वास्तव में किसी को अपनी वाणी को बहुत मीठा करना है तो शास्त्र कहते हैं उसको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो भागवतम है, इस भागवतम जनरली भौतिकवादी लोगों को यही ज्ञात रहता है कि भागवतम का मतलब है केवल सप्ताह करना, 7 दिनों के लिए भागवत को सुनना और उसके बाद अपना भौतिक कार्यों में निमग्न हो जाना। लेकिन वास्तव में भागवतम एक भक्त के लिए जीवन है। जिस प्रकार से हम निरंतर सांस लेते हैं उसी प्रकार से भक्त भागवतम के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो भागवतम को श्रवण करना ही भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। इस संसार में हम सोचते रहते हैं अरे भगवान की सेवा किस प्रकार से करूं। व्यक्ति सोचता है मेरे पास धन होना चाहिए, मेरे पास बल होना चाहिए, मेरे पास सौंदर्य होना चाहिए, मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, तभी मैं भगवान की सेवा कर सकता हूं। लेकिन भगवान शास्त्रों से हमें बताते हैं कि वास्तव में सर्वोत्कृष्ट जो भगवत सेवा है वो यही है, सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरतिया दा। कि भगवान की जो उत्कृष्ट सेवा कोई कर सकता है व्यक्ति, तो वो केवल यही है कि वो अपने जीवा के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करे और अपने कानों के द्वारा कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करें। इससे बढ़कर इस संसार में सेवा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रुण्वता स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना रुदत्तस्तो हि अवद्राणी विधुमति सुरुत्सताम। कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करता है तो उसके हृदय के जो अमंगल है, अभाग्य है, वो सारे उसके जीवन से दूर हो जाते हैं। शुन्मता सो कथा कृष्ण, भगवान कहते हैं कि इसकी उसकी कथा मत सुनो। अभी हम भौतिक जीवन में सुबह उठते हैं तो टेलीविजन ऑन करते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, मोबाइल से सुनते हैं, रेडियो से सुनते हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में सुनते हैं, क्रिकेट स्टार के बारे में सुनते हैं, जो हीरोज हैं मूवी स्टार्स के बारे में सुनते हैं। लेकिन वास्तव में ये सारे जो लोग हैं वो दुर्गुणों से भरे पड़े हैं, उनका जीवन इतना गंदा है, चाहे मूवी स्टार हो या क्रिकेट स्टार हो। हाँ, वो आइडियल कैरेक्टर नहीं है उनके पास, कैरेक्टर लेस लोग हैं। लेकिन हम यदि उत्तम बनना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण को कहा जाता है पुरुषोत्तम। हम उत्तम बनना चाहते हैं तो कृष्ण पुरुषोत्तम है, तो ऐसे पुरुषोत्तम कृष्ण के बारे में हम सुनेंगे तो हमारे अंदर भी दिव्य गुणों का विकास होगा और हम वास्तव में जिस चीज को ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में, आध्यात्मिक या सुख है या शांति आदि है, वो हमें सरलता से प्राप्त हो सकता है। इस भौतिक जगत में व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास धन आएगा तो उससे मैं सुखी होऊंगा। वैसे सारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो दो शब्दों में टिका हुआ है। जैसे इस श्लोक का पहला शब्द है तुष्टम और इसके विपरीत क्या है अतुष्ट। संतुष्ट और असंतुष्ट या तुष्ट के विपरीत आप ये भी देख सकते हो रुष्ट। रुष्ट का मतलब किसी को रुष्ट कर देना, मतलब नाराज कर देना। तो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन की सफलता क्या है कि आपको भगवान और जो आध्यात्मिक गुरु है या वैष्णव गण है उनको तुष्ट करना, सेटिस्फाई। इसलिए शास्त्र कहते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। पांडवों के जीवन में दो एक ही लाइन उनको याद रहती थी पांडवों को, हमेशा द्रौपदी का जीवन या कुंती का जीवन, युधिष्ठिर नकुल सहदेव आदि का जीवन इसी एक लाइन के प्रति केंद्रित था, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम इस जगत के सबको तुष्ट करना चाहते हैं। भगवान को संतुष्ट करने के बजाय हम भगवान के अलावा जो बाकी जीव है सबको तुष्ट करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं। ना हम संतुष्ट होते हैं ना जिनको हम संतुष्ट करना चाहते हैं वो भी संतुष्ट नहीं होता। व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, धन अर्जन करता है, बच्चों को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, हाँ पत्नी की रक्षा करता है, जीवन भर अपनी इच्छाओं को खत्म करेगा, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो लगा रहेगा। बुढ़ापा आएगा तो लोग वही लोग जिनकी तुष्टि में लगा हुआ है वही पूछते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, इतने साल आपने बिता दिए। तो वास्तव में इस जगत के किसी भी व्यक्ति को हम तुष्ट नहीं कर सकते। कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो हमसे जो जुड़े हुए जीव है वो भी संतुष्ट होने लगेंगे। इसलिए भागवतम कहता है, भागवतम में श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ में पानी देने मात्र से वृक्ष की हर जो शाखाएं हैं, पत्ते हैं, टहनी हैं, फ्रूट्स हैं, हाँ उनको पानी मिल जाता है, या पेट को भोजन देने मात्र से सारे शक्ति में शरीर में शक्ति का संचार होता है, तो उसी प्रकार से कृष्ण को तुष्ट करने में सबको आप तुष्ट करते हो और किसी की अलग से आपको संतुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। जब दुर्वासा मुनि दुर्योधन के पास आए तो उन्होंने दुर्वासा का बड़ा स्वागत आदि किया, अभिवादन किया और उनको टेक केयर किया, उनको भोजन आदि दिया, इतना संतुष्ट किया। दुर्वासा ने कहा हे दुर्योधन बताओ क्या चाहिए आपको, तो दुर्योधन ने कहा बस जैसे आपने हमारे ऊपर कृपा की है ना वैसी कृपा पांडवों के प्रति कीजिए। अभी दुर्योधन का मतलब है जिस दूसरों का धन हड़प कर लेता है उसको दुर्योधन कहा जाता है, और उसका बाप या पिता कौन था, धृतराष्ट्र। दोनों के अंदर एक ही गुण था, धूर्तता से जो दूसरों का राष्ट्र, दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों का धन जो हड़प लेता है वो धृतराष्ट्र है। जैसे कहते ना भौतिक जगत में जैसा बाप वैसा बेटा, तो वही है दुर्योधन और धृतराष्ट्र। तो दुर्योधन हमेशा सोचता था कि पांडवों का बुरा कैसे हो, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो ईर्ष्या है, द्वेष है, वो बहुत भरा हुआ है। हम सब प्रकार से सुखी रह सकते हैं, सब आपके पास है, धन है, बच्चे हैं, गाड़ी है, पत्नी है, अच्छा मकान है, सब कुछ है, लेकिन देखा जाए क्या है, पड़ोसी के पास और थोड़ी चीजें ज्यादा आ रही है, तो हम उससे दुखी हो जाते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको दुखी होने का? सब हम ईर्ष्या द्वेष, अभी दुर्योधन के पास सब कुछ था लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा था, पांडव सुखी क्यों है? बल्कि पांडवों के पास भौतिक धन नहीं था उनके पास, लेकिन संतु जंगल में थे, वनवास में थे 14 साल के लिए, लेकिन संतुष्ट थे, सुखी थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपने जीवन में रखा था। तो कृष्ण जब दुर्योधन ने कहा कि जैसे आपने हमारे ऊपर कृपा की है, ऐसी कृपा कीजिए जाकर पांडवों के प्रति आपकी बहुत दया होगी, उसके पीछे उसकी कपटता थी, ढोंग था ये। तो दुर्वासा ने कहा हम जाते हैं, अभी उसको पता था दुर्योधन, दुर्वासा चलते तो अकेले नहीं चलते, 60,000 शिष्यों के साथ चलते हैं, और वो बेचारे पांडव वनवास में रहते हैं, जंगल में रह रहे हैं, उनके पास ना खाने के लिए सुव्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, वहां भेजा, और ऐसे समय जाओ जब आप वहां जाकर अच्छे से भोजन कर सके। तो ये दुर्वासा मुनि आदि गए जंगल में, और उनको फिर पांडव मिले, युधिष्ठिर महाराज आदि ने प्रणाम किया और कहा बताइए महाशय आपके हम क्या उचित सेवा कर सकते हैं। तो दुर्वासा आदि आए, आतिथ्य आए, आतिथ्य देवो भो, आतिथ्य क्या है? भगवत देवता के समान है, उनका वैसे सत्कार सम्मान हमें करना चाहिए। शास्त्र कहते कि गृहस्थ को ये उसका धर्म है, जिस गृहस्थ के घर में आतिथ्य की सेवा नहीं होती वो गृहस्थ जीवन नहीं है, वो पशुवत घर है। तो अतिथि का मतलब है कोई आता है बिना तिथि के आ जाए, और उसको आप कितने अच्छे से टेक केयर करते हो उससे पता चलता है कि आपका गृहस्थ लाइफ कितना बैलेंस है और कितना प्रॉपर है। बिना तिथि के आ जाए, बिना फोन करके आए, बिना ईमेल भेजे आ जाए, बिना SMS के आ जाए, और आप तुरंत तैयार हो उसकी सेवा के लिए, आप कैसे स्वागत करते हैं उससे पता चलता है आपका एटीट्यूड, आपकी मनोवृत्ति क्या है। अभी तो हम तिथि बता के आ जाते हैं, नहीं फोन करके आ जाते हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता में अतिथि डायरेक्टली आ जाते थे। तो जब दुर्वासा मुनि गए तो वहां पांडव आदि थे, उन्होंने देखा अरे अभी तो भोजन का समय हो गया है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप आइए, अभी तो आप स्नान आदि कीजिए और फिर भोजन की आप व्यवस्था कर ही रहे, आप भोजन करने के लिए आ जाइए। तो दुर्वासा मुनि गए स्नान करने पूरे अपने पूरी टीम के साथ, 60,000 सेना के साथ जो शिष्य गए स्नान आदि की कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज आए, उन्होंने पूछा द्रौपदी आपके पास वो अक्षय पात्र जो था सूर्य ने दिया हुआ, अक्षय पात्र में तब तक अनलिमिटेड लोगों का फीड कर सकते हो, खिला सकते हो, जब तक आखिरी में वो ना खाए, कौन? द्रौपदी। तो उस समय द्रौपदी ने भोजन कर लिया था, वो धोखे रख रही थी उस अक्षय पात्र को, ने देखा अभी तो इम्पॉसिबल है, अभी तो पॉसिबल संभव ही नहीं है ये इनको खिलाना, अक्षय पात्र और भोजन दे ही नहीं सकता। तो द्रौपदी को याद आए, किसकी याद आए? कृष्ण। इसलिए भगवान के भक्तों के जीवन में सदैव कृष्ण केंद्रित रहते हैं। तो उन्होंने द्रौपदी को, द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया, क्योंकि भगवान वहां निवास करते हैं जहां कृष्ण का स्मरण होता है, कृष्ण का नाम कीर्तन होता है, कृष्ण की कथा होती है, कृष्ण की सेवा होती है। इसलिए नारद मुनि ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण बताओ, मैं कई पूरे 14 लोकों में ट्रैवलिंग करते रहता हूं। नारद मुनि को स्पेसमैन कहा गया है, उनको वीजा पासपोर्ट आदि की आवश्यकता नहीं है, ना एरोप्लेन ना टिकट आदि की, वो मन के गति से ट्रैवल करते हैं, चाहे हवा हो या ना हो, उच्च दबाव हो या ना हो, जहां मर्जी जाते हैं। और जाते समय क्या करते हैं? नारद मुनि बाजाय बिना राधिका रमन नामे। तो नारद मुनि को लिंग पुराण में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं नारद मुनि को एक वीणा दी, और इस वीणा के द्वारा नारद मुनि क्या करते, सदैव उसको बजाते हैं और कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद मुनि ने पूछा भगवान बताओ आपका एड्रेस क्या है, अब यहाँ जहां तक भागते रहते हो बताओ एग्जैक्टली आपका एड्रेस बताओ, क्योंकि कई लोग कुरियर भेजना चाहते हैं आपके पास, लोग भेजेंगे क्या, भगवान को ऑर्डर लिख के देंगे, भगवान धन चाहिए, भगवान सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करो। हम क्या भेजेंगे भगवान के पास, आते क्यों है ऑर्डर्स लेके, ऑर्डर देने के लिए आते भगवान को, और भगवान फिर भी तत्पर है। लेकिन यहां जब नारद ने पूछा तो भगवान ने कहा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा। हे नारद, मैं ना वैकुंठ में निवास करता हूं, ना जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे योगियों के हृदय में मैं निवास नहीं करता हूं, जहां मेरे भक्त मेरे नाम संकीर्तन आदि का गान करते हैं, हे नारद मैं वहां निवास करता हूं। तो भगवान से मैसेज नारद स्वीकार करते हैं और जहां तहां लोगों को प्रेरित करते हैं। हाँ, क्या करो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कि मुख से भगवान के नामों का उच्चारण करो, भगवान का भजन करो और भगवान की शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन करो। तो जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान तत्तुरंत आ गए। अभी हम कब से पुकार रहे हैं भगवान को, कई साल हो गए, बेड़दा गंदी हो गए, माला उनको घिस घिस के बनी, उसके छोटे हो गए, क्योंकि भगवान अभी आ नहीं रहे हमारे जीवन में। भगवान को लाने के लिए कैसे पुकारना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो भगवान द्वारका में थे, द्वारकाधीश रूप में नहीं, उनको ना भोगा सर्व कर रहे थे, शर खिला रहे थे, और वहां सुना, भगवान ने सुना, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिसके द्वारा वो सुनाई देता है कि क्या चल रहा है पृथ्वी लोक में, कौन कौन मुझे पुकार रहा है, बल्कि भगवान की विशेषता है जो मर्जी लैंग्वेज में आप भगवान को पुकारो, है ना, जो मर्जी भाषा हो, सब भगवान हम उस लैंग्वेज को स्वीकार करते हैं, समझ जाते हैं। तो जब उनको पुकारा द्रौपदी ने, जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था, दूसरी घटना, तब रुक्मिणी कहती है कि अब इतना भगवान जैसे कुछ उन्होंने पुकारा ना, हे कृष्ण हे यादव मेरी रक्षा करो, तो कृष्ण अपना भोजन छोड़कर दौड़ने लगे। तो रुक्मिणी ने कहा क्या इतना क्यों भाग रहे हो, अभी अभी तो कृष्ण डाइनिंग टेबल में अभी अभी बैठे थे, मैं अभी तो आपको भोजन सर्व कर रही थी। कहते हैं कि जो रुक्मिणी है, द्रौपदी है, उसने मुझे पुकारा है और उसने इसने एक रोड बनाया है, जैसे ना आजकल हाईवेज का जमाना है, नॉन स्टॉप हाईवेज है, तो वैसे उन्होंने हाईवे मेरे लिए बनाया है। और वो हाईवे कैसे बनाया है, अभी तो सीमेंटेड रोड है, कई प्रकार के वराइटीज ऑफ रोड्स है, लेकिन उसने कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी ने जो रोड बनाया है वो उसके आंखों के आंसू से बनाया हुआ है, इतनी तीव्रता है, इतनी तीव्रता के साथ, व्याकुलता के साथ उसने मुझे पुकारा है और मैं भाग रहा हूं, इसलिए मैं तत्पर हूं। और वास्तव में भगवान उसी रोड पर चलना उनको अच्छा लगता है, भक्त के व्याकुलता से इमरजेंसी या रियली नीड है मेरे लाइफ में भगवान की, उस नीड के अनुसार, जैसे कोई याचक होता है ना भिखारी, भूख नहीं लगी, भूख लगी है, ठंड के दिनों में ना वस्त्र है ना खाने के लिए है, शरीर काला पड़ गया है, तो वो कैसे याचना करता है, प्लीज आप मुझे 1 रुपया दे दो, 50 पैसे दे दो, अब भोजन दे दो, जो उसके अंदर भिखारी के अंदर जो याचना है, वो जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड व्यक्ति के अंदर होगा तो कृष्ण उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, कृष्ण तीव्रता से हम उसके जीवन में आते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो जब द्रौपदी ने पुकारा, जब ये अक्षय पात्र खाली था, दुर्वासा को भोजन बोला कि भोजन खिलाऊंगा और खिलाएंगे नहीं तो आपका आपके वंश के साथ क्या हो जाएगा, सत्यानाश, खत्म, एंड, फाइनल एंड हो जाएगा। दुर्वासा जो बहुत क्रोध के वो मूर्तिमान स्वरूप है, शिव जी के वो अंश अवतार है, शंकर के, जो प्रलय के लिए तत्पर रहते अपने तीसरी आंख खोलकर, तो ऐसे दुर्वासा मुनि सोच रहे थे, शिष्य भी सोच रहे थे, पांडवों के यहाँ भोजन होगा, कितनी वैरायटीज होगी, बनाई होगी उन्होंने, नहीं मालपुआ होगा, वैरायटी ऑफ सब चीज होगी, ठंड में तो परोठे भी होंगे, अभी तो हम साथ कर लेते हैं, ये सारे शिष्य सोच रहे थे। और यहाँ कृष्ण आए और कहा है द्रौपदी मुझे ना बहुत भूख लगी है, अभी भगवान को भूख लगने की क्या आवश्यकता है, 16,108 रानियां जिनको खिला रही हैं, जिनकी 8 या 10 माँ है, भगवान की बहुत सारी माताएं हैं द्रोण द्वारका में, वसुदेव की तो 8 या 10 पत्नियां थी, बहुत सारी स्त्रियां सब भगवान को खिलाते रहते थे, लेकिन फिर भी कृष्ण भूखे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं जहां प्रेम से बनाया हुआ भोजन या भक्त के द्वारा दिया गया उसको भगवान तुरंत आके स्वीकारते हैं, हाथ से खींच के खा लेते हैं। वृंदावन की जो गोपियां हैं अपने घर में मक्खन दूध दही आदि बनाते थे, अभी तो हम भगवान के सामने प्लेट लेके जाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं, घंटी बजाते रहते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एक आंख खोल के देखते हैं, है? घंटी बजाते बजाते और उसमें इतनी तेज भूख लगी होती है, हाँ जल्दी करो मुझे एक बात बता रहे थे, जिनको उनको सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है तो वो अपने पत्नी को बोलते जल्दी करो भगवान को ऑफर करो, वो रखते के लिए तो ये जाके निकाल के ले आते हैं, कहीं अनकंट्रोल्ड कंट्रोल नहीं होता। तो वैसी स्थिति भगवान जब प्रेम से कोई बनाता है तो भगवान को अर्पित करने की आवश्यकता नहीं, घंटियां बजाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो ब्रजवासी गोपिकाएं हैं वो दूध दही मक्खन आदि इस भावना से बना देते हैं कि कृष्ण आके इसको ग्रहण करना चाहिए, तो भगवान उसके लिए जाते थे। ऐसे नहीं कि अकाल पड़ा था नंद महाराज के घर में, न दूध था न मक्खन था न दही था, ऐसे नहीं, हम तो प्रेम के लिए भाग रहे थे। फिर भगवान आया और कहा हे द्रौपदी मुझे भूख लगी है, कुछ है आपके पास? तो उन्होंने कहा देखो अभी भी तो मैंने ना अक्षय पात्र धो के रखा है, कुछ नहीं, ठीक से देखो। तो वास्तव में भगवान देखते हैं, हमें दिखाई नहीं देता। हाँ जैसे अकबर और बीरबल है, तो बीरबल ने अकबर ने बीरबल को पूछा कि बताओ ये जगत में लोग ज्यादा देखने वाले हैं या अंधे हैं? तो बीरबल ने कहा ज्यादातर लोग क्या है, अंधे हैं, देखने वालों की संख्या कम है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, सबके पास तो आंखें ही आंखें हैं। भागवतम में शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं पश्चन अपि न पश्यति, व्यक्ति अंधा है। तो यहां बीरबल ने कहा कि आप क्या कीजिए सरकार, उस समय तो साइकिल थी या नहीं थी, लेकिन आप सोचो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को आप बोलो कि आप ना साइकिल चलाओ चावड़ी बाजार के मार्केट में चांदनी चौक पे, तो लोग पूछेंगे ना ओ पंत प्रधान और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी क्या हो गया आपको, क्या हुआ रहे? क्या कर रहे हो, पूछेंगे ना कि अभी दिखाई तो दे रहा है साइकिल चला रहा है, लेकिन ज्यादातर क्या पूछेंगे क्या कर रहे हो। कोई व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कुछ एक ऐसा कार्य करता है तो लोग देख रहे हैं फिर भी पूछेंगे आप क्या कर रहे हो। बीरबल ने कहा हाँ इसका मतलब अधिक से अधिक लोग अंधे हैं और वास्तव में भगवान वास्तव में देखते हैं और भगवान के भक्त वास्तव में देखते हैं। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं पश्यन्ति विमुडा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो मूर्ख लोग हैं व्यक्ति हैं अज्ञान के कारण देखते हुए उसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त है वो वास्तव में इस जगत को सही रूप में देखता है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता दी है अर्जुन को सही रूप से देखने के लिए, अर्जुन भी अंधा हो गया था। हाँ आसक्ति अंधे प्रेम अंधा बना देता है, प्रेम इस जगत में प्रेम नहीं है तो काम है, आसक्ति है अटैचमेंट। तो धृतराष्ट्र शरीर से भी अंधा था और अपने स्पिरिचुअल रूप से आध्यात्मिक रूप से भी वो अंधा था। तो भगवान ने जब द्रौपदी को कहा कि देखो देखो तो द्रौपदी ने देखा, भगवान ने एक छोटा सा कर तो बचा होगा, उन्होंने लिया ले लिया और भगवान ने स्वीकार किया, तो इसे खाया ना। तो तब भगवान ने क्या किया, युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर वो जो है ना वहां कौन है दुर्वासा एंड कंपनी, उन सबको ले जो बुलाओ और किसको भेजो भीम को और वो भी गदा के साथ, ऐसे लंबी बड़ी गदा ऐसे रख के बोलो जाओ अरे बोल प्रसाद इज रेडी, प्रसाद तैयार है। तो गए भीम अपनी लंबी चौड़ी गदा लेकर और ऐसे हटे कट्टे है गए और उन्होंने अनाउंसमेंट की प्रभु जी एंड माता जी तो नहीं थी प्रभु जी प्रसादम तैयार है भोजन तैयार है। तो अभी दुर्वासा और ये जब भगवान ने जैसे ग्लास खा लिया ना सबको इतने डकार आने लगे पूरे फुल हो गया स्टमक फुल। तो भी बहुत उन्होंने सोचा, एक तो सोचा भी मना करेंगे भीम को तो उसके हाथ में गदा है इतने मेहनत से उन्होंने कुकिंग किया होगा बेचारे द्रौपदी कुंती और ये पांच पांडव जंगल से कहां कहां कितनी चीजें उन्होंने लाई होगी और हम निठल में यहाँ बस स्नान कर रहे हैं और स्नान के बाद भी पहले से बोल देते ना कि प्रसाद नहीं लेंगे आपके घर में। हाँ कुकिंग होने के बाद आप कहोगे कि प्रसाद नहीं लेंगे तो उचित नहीं है। फिर वहां से दुर्वासा और उनकी जो मंडली है वो उन्होंने कहा भीम जी आप आगे चलिए हम आ जाते हैं। भीम जी आ गए अरे सब वापस सोचा भी जाएंगे नहीं फिर ये लोग वहां से भाग गए। तो वास्तव में यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट ये सीक्रेट है लाइफ में सुखी होने का कि भगवान को संतुष्ट करना उसमें ही हमारा जो सुख है वो निहित है। इसलिए शास्त्र इस चीज पर जोर देते हैं किस प्रकार से हमें जीवन यापन करना चाहिए कि जिसके द्वारा हम भगवान को संतुष्ट कर सके। भगवान को संतुष्ट करें और आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट करें वैष्णव को संतुष्ट करें जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो स्वाभाविक रूप से प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और स्कूल का ज्ञान प्राप्त करना उसमें बहुत अंतर है। वहां के जो टीचर है वो इसलिए पढ़ाते कि महीने के अंत में लक्ष्मी पैसा मिलेगा, उनको इतना प्रेम नहीं है बच्चों को ज्ञान देने के लिए, वो तो अपने बिजनेस के लिए वहां बैठे हैं स्कूल खोलकर और टीचिंग दे रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जो गुरु है वो केवल वेतन भोगी नहीं है कि मैं अपने शिष्य बनाओ हजारों हजार हजारों हजारों और उनसे मंथली कुछ आमदनी ले लो जिससे मैं क्या करो इंद्रिय तृप्ति करो अपना उपभोग करो। इसलिए कलयुग में कहा गया है अधिक से अधिक जो गुरु है वो वास्तव में शिष्य इसलिए बनाएंगे कि अपना जो भोजन उदर निर्वाह हो ये उनकी भावना है। कोई शिष्य के कष्ट को दूर करने के लिए शिष्य नहीं बनाएगा कलयुग में। और जो कलयुग में शिष्य भी गुरु इसलिए बनाएंगे कि सारे जगत को ये बताएंगे कि हमारे भी क्या है गुरु है। और ना वो गुरु बन सकता है और ना ये शिष्य बन सकते हैं, हाँ दोनों क्या है नरक के भागी हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन का सीक्रेट है रहस्य है आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करने के लिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विधि है प्रोसेस है और उस प्रोसेस को पालन करना होगा। क्या है प्रोसेस आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करने के लिए तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रणिपात का मतलब है सरेंडर प्रणाम करना शरणागत हो जाना। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन आपको प्रश्न पूछने का अधिकार तभी है जब वास्तव में आप क्या करते हो शरणागत हो गए हो। और तीसरी चीज क्या है सेवया हम केवल प्रश्न पूछना चाहते हैं ना सेवा करना चाहते ना सरेंडर होना चाहते हैं। तो कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान हम अपने जीवन में अर्जन नहीं कर सकते इम्पॉसिबल है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो प्रोसेस ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। आध्यात्मिक नॉलेज को अर्जित करने के लिए यह आवश्यकता नहीं है कि आप कितने स्कॉलर हो पीएचडी एमए बीए व्हाटएवर आपने कितना भौतिक पढ़ाई की है वो मायने नहीं रखती स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। स्पिरिचुअल नॉलेज टोटली डिफरेंट है भौतिक ज्ञान से। जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक नॉलेज आ जाता है ज्ञान आ जाता है भौतिक ज्ञान उसके लिए चुटकी के समान है कोई भी किसी भी फील्ड का जो ज्ञान है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करने के लिए हाँ ये मनुष्य जीवन हमें मिला है क्योंकि भौतिक ज्ञान हमारे भौतिक देह के नष्ट होने के साथ साथ खत्म हो जाएगा। फिर से हम जन्म लेंगे फिर से पहली क्लास में जाना होगा दूसरी क्लास में जाना होगा तीसरी क्लास में जाना होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान आप हमेशा आपके साथ बना रहता है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं यश प्रसादार भगवत प्रसादो यश प्रसादार न प्रतिकुतो भी। भगवान के जो भक्त है या गुरु है उनकी कृपा से ही वास्तव में कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जो कृपा है या भगवान की कृपा है या भगवत ज्ञान है वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से मैं अपने आध्यात्मिक सेवाओं के द्वारा जो आध्यात्मिक गुरु है उनको उनको संतुष्ट करो, उनकी प्रसन्नता के लिए कैसे कार्य करो। भगवान कहते मद भक्ता पूजा ध्यान कहा, मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी श्रेष्ठ है। इसलिए तो भगवान के घर में जब सुदामा आए तो भगवान ने क्या किया, उनके चरणों को धोया, उनके चरणों का। रुक्मिणी को कहा कि तुम फैन करो, गर्मी के दिन है, सबको उनकी सेवा में लगाया। तो भगवान ये चीज स्थापित करना चाहते हैं अपने आचरण से, सुदामा आदि की सेवा करके। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में सफलता का रहस्य यही है, या आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान, दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने का एक ही लक्ष्य है कि आध्यात्मिक गुरु की संतुष्टि। हम तो आध्यात्मिक गुरु की संतुष्टि के बजाय हम अपनी तुष्टि चाहते हैं। इस संसार में कोई किसी को न तुष्ट कर सकता है ना हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो संबंध है एक दूसरे के साथ है, संबंधों का पहला लक्षण है टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है। और दूसरा लक्षण ये क्या है प्रॉब्लम भौतिक संबंध में, कि सारे संबंध स्वार्थ पर टिके हुए हैं, चाहे पिता पुत्र हो, पति पत्नी हो, बच्चों के साथ हो, सब अलग अलग जो रिलेटिव्स हैं, बॉस और सर्वेंट का जो संबंध है, कि सारे जो रिलेशन है वो तो स्वार्थ पर टिके हुए हैं। तो जब तक पेड़ में फ्रूट्स है तब तक पंछी उसके ऊपर रहते हैं, और जैसे ही जो फ्रूट से खत्म हो जाते हैं पंछी उड़ के चले जाते हैं। कौन चाहता है किसकी केयर करता है भौतिक जगत में। एक बार एक पति था जिसने बहुत धन अर्जन किया, इतना धन अलेक्जेंडर द ग्रेट के समान इतना धन, उसने कहा कि जब मैं शरीर त्यागूंगा ना, हम मेरा जो क्या कहते कॉफी, हाँ मैं मर जाऊंगा तो उसके साथ जो धन है वो भी मेरे साथ क्या करो, उसमें डाल दो अंदर, जैसे क्रिश्चियन जमीन के अंदर बॉडी को डालते हैं। तो वैसे ही तो उसने अपने वकील, अपनी पत्नी सबको बोला। तो पत्नी तो बहुत चतुर है, पत्नी ने कहा, वकील ने, पत्नी बहुत रो रही थी और वो सोच रही थी कि अभी जाने दो धन, उन्होंने बोला है तो करना पड़ेगा, आखिरी इच्छा है, धन धन मांगा है तो भेजना पड़ेगा धन। तो वकील कहते तुम पागल हो गई क्या, वो धन क्या करेगा वो। तो कहते नहीं नहीं मैं तो चाहती हूं, क्या कीजिए वकील जी, अभी कैश तो नहीं दे सकते, आप चेक बना के डाल दीजिए, वो वहां जाकर मैं विड्रॉल कर लेगा। इस प्रकार की सिचुएशन है, जो सारे संबंध है वो भौतिक स्वार्थ पर निहित है। इसलिए वास्तव में जीवन का सफलता यही है एक शिष्य के लिए कि किस प्रकार से गुरु को संतुष्ट किया जाए, आध्यात्मिक गुरु को। इसलिए शास्त्र में कई उदाहरण आते हैं, जैसे उपमन्यु का उदाहरण आता है उपनिषदों में। जो उपमन्यु थे वो धौम्य ऋषि के शिष्य थे। तो ये जो उपमन्यु है वो अपने गुरु के पास गए, यंग थे बिल्कुल, अभी अभी भट्टा करता नवयुवक, शरीर बड़ा सुंदर था। तो उन्होंने कहा, गए उस ऋषि के पास, धौम्य ऋषि के पास, हे ऋषि आप मुझे अपना शेल्टर प्रदान करो, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो और आप मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो। तो उस ऋषि ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको 25 साल तक मेरी जो गाय है ना उनकी सेवा करनी पड़ेगी। गायों की सेवा करोगे, गायों को चराने ले जाओगे तो मैं ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा। उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने वो सेवा स्वीकार की। तो ये जो उपमन्यु है वो रोज जाते थे गायों को चराने के लिए। तो गुरु ने, कई दिन हो गए, कुछ महीने बीत गए, अभी अभी आश्रम में आ गया था, अभी हम आश्रम में रहते, हमें कहा जाओ जरा गोबर उठा के लाओ, गाय चराने जाओ, कितना कठिन है। तो वहां वो गए और गुरु ने एक दिन बुलाया उनको, हे उपमन्यु यहाँ आओ। तो उपमन्यु गए, उपमन्यु गए, अरे क्या हो गया तुम, जब आश्रम ज्वाइन किए थोड़े से ऐसे थे, थोड़े दिनों के बाद इतना फैट क्यों हो गए, मोटे ताजे। तो उन्होंने कहा गुरु क्या खाते हो, गुरु जी ने पूछा। गुरु जी आप, गुरु जी तो कुछ देते नहीं थे उनको खाने के लिए। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ दे दे रहा हूँ, कुछ नहीं प्रदान कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा इतना शरीर हट्टा कट्टा, हेल्दी, मोटे ताजे कैसे हो रहे हो, उन्होंने कहा गुरुदेव मैं जब गाय चराने जाता हूँ ना तो वहां जो गायों का दूध है वो पीता हूँ, मैंने तुम्हें तो बोला नहीं दूध पीने के लिए। वैसे शास्त्र कहते हैं ब्रह्मचारी को गुरु के लिए कलेक्ट करना चाहिए चीजें। पहले क्या होता था वैदिक कल्चर में जो ब्रह्मचारी थे वो झोला टांग के गांव में जाते थे मांगने के लिए, सब घरों में जाकर मांगते थे कुछ दे दो तो लोग डालते थे, तो सारा जो कलेक्ट करता है फिर लाके गुरु के पास देते थे और गुरु जो उस समय जो निकाल के उसको खाने के लिए दे वो उसका भोजन। यदि गुरु भूल गए तो उस दिन वो ब्रह्मचारी तो एकादशी फास्टिंग। तो उपमन्यु को तो वही कहा था मैंने तुम्हें दिया नहीं और तुम पी रहे हो गाय का दूध आदि, कल से नहीं पीना है। फिर उपमन्यु रोज गवे चला रहे और कुछ महीने कुछ दिन बीत गए, अरे और मोटे ताजे होते जा रहे। उपमन्यु क्या सीक्रेट है तुम्हारे हेल्थ का, जैसे कहते ना कौन से चक्की का आटा खाते हो, तो उन्होंने कहां से खाते हो, कहते आपने तो मना किया लेकिन जो बछड़े हैं तो जब गाय का दूध पीते हैं दूध पीते पीते जो झाग बन जाता है वो झाग को मैं ना पी लेता हूँ। कितनी गाय, हजारों गाय है, उनका झाग पीने मात्र से इतना रुष्ट पुष्ट हो रहा। फिर इस प्रकार से कुछ दिन बीते और कहा तुम झाग भी नहीं पीना है। अभी उपमन्यु का तो कोई कहेगा कि ये गुरु की बड़ी निष्ठुरता है, क्रुएल्टी क्या कहेंगे इसको, निर्दयता है, क्रूरता है। तो फिर उपमन्यु गए गाय गवे चराने के लिए और फिर देखा कि बहुत भूख लग रही है। हाँ कई चीजें हम सहन कर सकते हैं। हाँ जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग कैटेगरी है, जैसे ब्राह्मण है वो कभी भोग को सहन नहीं कर सकता। आपको ब्राह्मण को प्रसन्न करना है ना उसको बस प्रसाद भेजते रहो, उसके पास खिलाते रहो, कोई बड़ा क्षत्रिय प्रवृत्ति का उसको कोई पद दे दो, है ना, पद दे दो उसको संतुष्ट करना है तो क्षत्रिय प्रवृत्ति का। जो वैश्य है ना उसको बिजनेस में लगा दो, बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज में लगाओ। जो शूद्र है उसको बाकी छोटी छोटी सेवाओं में लगाओ, उसमें संतुष्ट हो जाता है। हाँ तो इसे पता चलता है हम किस चीज में संतुष्ट हो रहे हैं, कौन से कैटेगरी में मैं आता हूँ। तो वहां उसको इतनी भूख लग रही थी उन्होंने कुछ नहीं किया कि पौधा देखा, उस पौधे के पत्ते आदि लिए उसका जूस बनाया, जूस उससे निकल रहा था और उसको पिया। पीने मात्र से उपमन्यु एक कुएं में जाके गिरा, अंधा हो गया। जब गुरु ढूंढने लगे उसको आया नहीं, अरे उपमन्यु कहा है, उपमन्यु कहा है। उपमन्यु को ढूंढने के लिए गुरुजी गए, गुरुजी गुरु, उन्होंने कहा उपमन्यु उपमन्यु कहाँ हो, तो कुएं से आवाज आ रही थी गुरुदेव मैं कुएं में गिरा हुआ हूं। हाँ तो कहते अरे कहाँ हो, फिर गए देखा अरे कुएं में क्या कर रहे हो यहाँ। कहते गुरुदेव आपने तो मना किया था ना दूध पीने दिया, ना झाग पीने दिया, ना कुछ और पीने दिया, इसलिए मैंने एक वृक्ष के पत्ते और ये सब तोड़ के उसको जूस पी रहा हूँ, पिया और मेरी आंखें दृष्टि चली गई और मैं जब गौओं के मुझे दिखाई नहीं देता तो मैं इस कुएं में आके गिर गया। तो फिर उन्होंने कहा उनको निकाला बाहर, बाहर निकाल कर उपमन्यु का आलिंगन किया, कहा उपमन्यु आपका ये जो ये है गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु को संतुष्ट करने की जो भावना है इसी कारण से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। हाँ कि जितना आध्यात्मिक ज्ञान है वैदिक ज्ञान का जो सार आदि है वो तो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। बल्कि उससे पहले एक घटना घटी। हाँ उपमन्यु को देखा तो गुरु ने कहा तुम्हारे आके चले गया भी वापस कैसे आ सकती है दृष्टि, तुमने जो देवताओं के डॉक्टर है अश्विनी कुमार, हाँ दो भाई है अश्विनी कुमार देवताओं के, दोनों का नाम एक ही है, हाँ वैद्य स्वर्ग के डॉक्टर, उनको बुलाया, उनको कहा मेरे डिसाइपल को आप जरा ठीक कर दो, उसके आंखें वापस। उन्होंने क्या किया एक केक बनाया, ऐसे नहीं कि केक आजकल बने रहे, केक उस समय से भी बन रहे थे, केक बनाया और कहा उपमन्यु इस केक को खाओ। तो उपमन्यु कहते नहीं मेरे गुरु का आदेश हो तभी खाऊंगा नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो गुरु को देखकर उनके आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ फिर गुरु ने कहा कि हे उपमन्यु तुम इतने गुरु को प्रसन्न कर दिया, तुष्ट कर दिया, तो सारा जो ज्ञान है सारे वैदिक शास्त्र आदि का उपमन्यु के हृदय में प्रकट हो जाता है। इवन हम देखते हैं कि जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए, कृष्ण और बलराम, तो वसुदेव आदि ने सोचा कि इनका अभी एजुकेशन नहीं हुआ है, गांव में रहेगा वहां वृंदावन में, पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, अभी तो सिटी में आए इनको स्कूल में भेजते हैं। तो उन्होंने सांदीपनि मुनि के आश्रम उज्जैन में भेजा स्कूल में, और वहां जब वो गए तो वहां उनकी जो पत्नी है सांदीपनि मुनि की, उनको चूल्हा जलाना था और लकड़ खत्म हो गई थी लकड़िया, उन्होंने कहा कृष्णा सुदामा जाओ थोड़ी लकड़िया लेके आओ। फिर दोनों एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय है गए और पूरे बहुत सारी लकड़ियां तोड़ी, देखा रात्रि हो गई और बारिश आ गई, तूफान आ गया, वापस आना उनके लिए असंभव था, रात्रि भर और पानी बह रहा है सब जगह। कृष्णा और ये दोनों एक पेड़ के ऊपर, पेड़ को पकड़कर ऊपर टहनी के ऊपर रात्रि भर रहे, किसकी सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए। तो फिर दूसरे दिन सांदीपनि मुनि ढूंढते हुए निकल पड़े, कहां है कृष्ण, कहां है सुदामा, है कृष्ण है सुदामा, ढूंढते ढूंढते गए तो देखा कि ये दो बच्चे लटक रहे ऊपर पेड़ के ऊपर। तो उन्होंने कहा अरे सुदामा कृष्ण क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा गुरुदेव लक्कड़ लाने के लिए भेजा था, इतना तेज वृष्टि आदि आई, बारिश अंधेरा हुआ, हम आ नहीं पाए तो उनको उतारा और उनका आलिंगन किया सांदीपनि मुनि ने। उन्होंने कहा कि आप भगवान को कोई आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं सिखाते हैं गुरु की सेवा के लिए कितना तत्पर होना चाहिए, कष्टों को स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो 64 कलाएं हैं उनमें स्वभावतः निपुण हो जाओगे, सारे शास्त्रों का नॉलेज आपके जिह्वा पे खेलने लगेगा और ऐसा नॉलेज होगा कि आप कभी नहीं भूल पाओगे, और कृष्ण को आप जो बोलोगे वो शाश्वत रहेगा हमेशा के लिए। तो देखो भगवत गीता बोली भगवान ने परमानेंट है, टाइमलेस स्क्रिप्चर। इस प्रकार से भगवान भी अपने आचरण से सिखाते हैं कि किस प्रकार से गुरु की सेवा करने मात्र से सारा जो दिव्य ज्ञान है वो एक प्रकार से हृदय में प्रकाशित हो जाता है और क्वालिफाइड हो जाता है जो व्यक्ति है। इसलिए ये आवश्यक है एक शिष्य को गुरु की सेवा के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करते हुए भगवान या गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। हम तो गुरु और प्रसन्नता के लिए कार्य न करके केवल अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं और हम भूल जाते हैं कि वास्तव में मृत्यु में, मृत्यु पर विजय पाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। ध्रुव महाराज को जब काल या मृत्यु आया उनको लेने के लिए, तो ध्रुव महाराज ने कहा रुको, मृत्यु के सर में पाव रखा और जो वैकुंठ का विमान है उसमें चढ़ गए। कितना पावरफुल होंगे अब सोचो, अभी नारद कितने पावरफुल डिवोटी बने हैं। एक पावरफुल भक्त बनने के लिए दो चीजें करना बहुत आवश्यक है, एक है गुरु सेवा एंड नाम सेवा। ये दो चीजें इतनी पावरफुल है कि आप पावरफुल भक्त बन जाओगे। जैसे नारद ने अपने गुरु ब्रह्मा की सेवा की और दूसरा नाम सेवा, निरंतर कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं। तो ऐसे नारद ने कितने कितने लोगों को भक्त बना दिया, मतलब जिसकी गंदा नहीं की जा सकती। संसार में जो टॉप मोस्ट डिवोटीज कोई है तो नारद के डिसाइपल है सारे, और नारद ने किसी को भेदभाव नहीं किया, जो भी आया उसको कृष्ण भक्ति दिया। नारद का मतलब है नारायण और द का मतलब है देने वाले। तो वास्तव में जो भक्त कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं वो सारे नारद है। प्रभुपाल एक लेक्चर में कहते हैं नारदा इज कृष्णा एजेंट, जैसे एजेंट होते हैं ना, तो कृष्ण के एजेंट कौन है, नारद है। तो नारद सब जगह कृष्ण भक्ति का वितरण करते हैं, और ऐसे नारद ने बहुत बड़े बड़े पापी तापी जत चिलो हरि नामे उद्धार लो, पापी आदि लोगों को भी नारद ने उनका उद्धार किया। दक्ष प्रजापति जो उनके बच्चे थे ने बच्चों को उन्होंने भक्त बना लिया। पहले दक्ष प्रजापति ने 1000 बच्चे उत्पन्न किए, नहीं 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। नारद ने उनको कहा अच्छा जीवन का लक्ष्य जानते कि नहीं, जीवन का लक्ष्य है बस क्या रखा है जीवन में, जाओ जंगल में ब्रह्मचारी बनो। वो बेचारों का ऐसा प्रचार किया कि वो चले गए परमानेंटली डिवोटी, घर आपस में आ गए फुल टाइम डिवोटी। और फिर नारद ने देखा, अभी इन्होंने सोचा, पिता दक्ष ने सोचा 10,000 को फुल टाइम बना दिया और 1,000 पैदा करता हूं। दक्ष ने और 1,000 पैदा किया है। फिर नारद ने सोचा इनको तो ज्यादा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, तो थोड़ी सी बात बोलूंगा ये भक्त बन जाएंगे। नारद गए, कहते हैं कि जो उच्च बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों का अनुसरण करते हैं। अभी जो 1,000 थे उनको भी फुल टाइम बनाया, उनको भी भेज दिया। दक्ष प्रजापति को इतना गुस्सा आया कि क्या चला रखा है तुमने, आपको कुछ है कि नहीं, जो भी आया उसको फुल टाइम ड्यूटी बनाते जा रहे। तो फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति ने शाप दिया, तुम क्या करते हो, इनके अंदर भोग के प्रति वैराग्य आया नहीं, उससे पहले तुमने इनको फुल टाइम बना दिया, तो ये उचित नहीं है, तुम्हें शाप देता हूं 3 दिन में या कुछ क्षण तक एक स्थान में आप नहीं रुक सकते। तो प्रभुपाद ने कहा जैसे नारद के लिए उनके जो दक्ष प्रजापति गुस्सा थे, वैसे मेरे प्रति भी मेरे जो भक्त है ना फुल टाइम, उनके माता पिता गुस्सा है, उन लोगों ने भी मुझे शाप दिया है, जिस शाप के कारण मैं एक मंदिर में नहीं रह पाता, हमेशा इस मंदिर में 2 दिन, उस मंदिर में 1 दिन, ऐसे पूरे विश्व में भ्रमण करते रहता हूं। तो ऐसे नारद जिन्होंने प्राचीन वरी दक्ष प्रहलाद को भक्त माँ के गर्भ के अंदर, नारद को कुछ ना एक्सपर्ट डिवोटी है, आप घर में हो या गर्भ के बाहर हो, नारद के संपर्क में आएंगे तो भक्त मिलने में आपकी छुट्टी नहीं है। जैसे हमारे ध्रुव गुरु कल मुझे कह रहे थे कि अब वो रोज जाते हैं मधुसूदन गुरु की टीम में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, दिल्ली जाते हैं रोज, तो वो रेड लाइट्स पे जाते हैं, वो कहते हैं ये मधुसूदन गुरु ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बुक ना दे उनके हाथ से, वो खड़े रहते सिग्नल की गाड़ियों के जो कांचे हैं शीशे नीचे हो जाते हैं अपने आप, कहते हैं बहुत पावरफुल है। वैसे नारद की स्थिति है, नारद में प्रहलाद है, ध्रुव भगवान नारद को भेजते कुछ काम करना हो, नहीं नारद के बिना, नारद बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। मैं आज सुबह सुबह लेक्चर के बारे में सोच रहा था, तो मैं सोच रहा था कि नारद के लाइफ में एक बहुत लंबी बुक बन सकती है, उसमें तो इतना नेक्टर है, नारद से संबंधित इतनी घटनाएं हैं, इतने श्लोकाज हैं, इतनी कथाएं हैं, और वही नारद चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास ठाकुर के रूप में आते हैं, और सेम कार्य नारद के रूप में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं, और वही नारद श्रीवास ठाकुर के रूप में गृहस्थ आश्रम में है, और अपने आंगन में क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। व्यासदेव को शिष्य बनाया, वाल्मीकि मृगारी जो मतलब लूटपाट करने वाले जो लोग हैं उनको, और इतना ही नहीं सांप को भी शिष्य बनाया, एक सांप को शिष्य बनाया, दीक्षा दे दिया, कुछ तो नाम रखा होगा उन्होंने, वो बेचारा इतना विनम्र हो गया कि अभी दीक्षा हो गई ना, अभी भक्त बन गया हूं, किसी को डसूंगा नहीं, हाँ किसी को गुस्सा नहीं होगा। तो एक गाँव में वो सांप रहता था, बेचारे बच्चे बच्चे वो सांप की पूंछ पकड़ के उठाते थे, घुमाते और फेंकते थे, साहब ने कहा अभी तो मैं विनम्र हो गया हूँ, भक्तों का ऐसे नहीं रहना चाहिए, हाँ उसकी तो खिचड़ी या चटनी बन जाएगी। तो साहब फिर परेशान हो गए, उन्होंने कहा जब से दीक्षा हुआ है, जब से नारद का शिष्य बना हूं, सब मुझे उठा उठा के फेंक रहे हैं। तो गए गुरु के पास अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, उन्होंने कहा बताओ सोल्यूशन बताओ। तो नारद ने कहा मैंने तुम्हें ये थोड़ी बोला था दीक्षा के समय, तुम काटो मत लेकिन क्या करो, अपना क्या कहते हैं मुख है ऊपर करो और फन को ऊपर करो और ये दिखाओ कि हाँ आप उनको काटने जा रहे हो, तो ऐसा करो तुम बचोगे। तो उन्होंने वैसे करना शुरू किया। तो हम भी भावुकता के कारण कई ऐसी गलतियां करते हैं, और फिर कहते हैं कृष्ण भक्ति में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हम खुद है, प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं है, शास्त्र में प्रॉब्लम नहीं है, गुरु की आज्ञा में प्रॉब्लम नहीं है, डिवोटीज में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, स्वयं ही है, गलत रूप से कृष्ण भक्ति का अनुसरण करना अपने मनमाने ढंग से, हाँ इसलिए उसको कहते हैं बैलेंस नहीं करना लाइफ को या समझना नहीं सही चीज को। तो ऐसे नारद ने किसको किसको भक्त बनाया, इतने सारे लोगों को नारद ने भक्त बनाया है, हाँ मतलब कितना कष्ट उठाया है। तो नारद पावरफुल है क्यों, क्योंकि ब्रह्मा की सेवा की, गुरु है उनके, और दूसरा नाम की सेवा की है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद में नारद के गुण भरे पड़े हैं, इसलिए एक आर्टिकल में पढ़ रहा था मॉडर्न नारदा, प्रभुपाद इज मॉडर्न नारद, प्रभुपाद मॉडर्न आजकल के नारद है। तो ऐसे प्रभुपाद ने भी ये 2 चीजें की है, प्रभुपाद ने जो गीत लिखा उसमें कहा भक्ति नाही ज्ञान नाही नामे खूब दरो, मुझ में ना भक्ति है ना ज्ञान है लेकिन नाम में मैंने बड़ा फेथ है, ये प्रभुपाद का गुण था। और दूसरा क्या था, अपने गुरु के आज्ञा का पालन करना। उस आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभुपाद को क्या क्या सहना नहीं पड़ा। प्रभुपाद एक बार वहां गए थे, जब अमेरिका गए यहां से, तो सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल के घर में रहे सबसे पहले। तो वहां सब्जियां लाते थे प्रभुपाद और उनके फ्रिज में रखते थे। फ्रिज में अंडे में थे, मांस भी था, वहां एक कोने में अपनी सब्जियां भी रखते थे। सोचो कितना स्ट्रगल करना पड़ा गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ा। एक बार प्रभुपाद नए नए शिष्य थे ना सारे हिप्पीज, प्रभुपाद ने कहा मुझे ना हेडशिप करना है। तब एक हिप्पी था, भक्त नया नया भक्त होगा, उसने वो रेजर पकड़ा कि नहीं पकड़ा कभी हाथ में, लेकिन प्रभुपाद बैठ गए हेडशिप करो। अभी वो सोचता था कि तो गुरु जी है, गुरु महाराज है, भावुकता देखिए। उन्होंने लगा कि गुरु महाराज है, तो इन्होंने क्या किया, पूरा हेडशिप किया और शिखा में काट के अलग कर दी पूरा प्लेन मायावादी सन्यासी। तो जब हेडशिप हुआ प्रभुपाद का, प्रभुपाद ने हाथ घुमाया चोटी गायब, शिखा नहीं है। प्रभुपाद कुछ बोले नहीं, सहन किया। तो उसने पूछा, उसने कहा मुझे लगा कि जो गुरु है उनको आवश्यकता नहीं है चोटी की। प्रभुपाद एक बार केनिया गए, मेरे वो मित्र कह रहे थे मुझे कल, तो कह रहे थे कि प्रभुपाद जब केनिया आए ना नैरोबी, तो वहां ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रचार शुरू किया था। तो वहां प्रभुपाद प्रवचन देने बैठे, अभी गए थे, जिस रात को गए प्रभुपाद वहां गए ना, तो किसी को उन्होंने ये नहीं भेजा कि मैं आ रहा हूं केनिया, सीधा गए, एक शिष्य को पकड़ा और चले गए केनिया। और सीधे एड्रेस था, एड्रेस को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। अब सोचो प्रभुपाद है, हम नकल नहीं कर सकते, ऐसे आचार्य गए, दरवाजा खटखटाया, रात्रि हो गई थी, वो शिष्य आग से मर, वैसे आप कहां उठते हैं मुश्किल होता है, उठा दरवाजा खुला तो सामने प्रभुपाद और एक शिष्य है, आज आए हैं नैरोबी केनिया की यात्रा में। फिर दूसरे दिन प्रवचन देना था, तो नए नए कुछ जो निग्रोज है वो थोड़े बहुत जुड़े थे, आते थे मंदिर प्रसाद पाने के लिए आते थे, कीर्तन सुनने के लिए आते थे। तो प्रभुपाद के कपड़े सुखा के रखे थे रात को, धुला के, और प्रभुपाद सुबह जब प्रवचन देने के लिए बैठे, तो देखा कि दो निग्रो ब्रह्मचारी युवक है ना, उन्होंने प्रभुपाद के कपड़े पहन के क्लास सुनने के लिए बैठे। प्रभुपाद ने देखा उनके जो लुंगी जैसा सन्यासी वेश है, ये सारे कपड़े पहन के दो बैठे हुए, दो तीन ड्रेस ले गए थे, एक पहना था, दो धुला के रखे थे, वो दो पहन के वो बैठ गए। प्रभुपाद ने देखा रे तो मेरे कपड़े लग रहे। ब्रह्मानंद को बुलाया, ब्रह्मानंद इधर आओ, तो भागवतम क्लास में क्या हो रहा है। तो ब्रह्मानंद आए, कान में कहा देखो ना ये ना मेरे कपड़े पहने हुए हैं, इनके कपड़े उतारो फिर धो के सुखाओ, मुझे फिर से चाहिए। तो उनके कपड़े उतारे, उनको ले गए क्लास के बीच में से कपड़े उतारे और फिर वो पहनने लगे। तो ऐसे प्रभुपाद कितना गुरु की सेवा के लिए ये बड़ी तपस्या की है, कैसे कैसे लोगों से उनको निपटना होता था। और प्रभुपाद को एक जगह एक न्यूड कैंप था, नग्न लोग रहते थे, एक एक, एक ग्रुप है, अभी विदेशों में तो कुछ भी हो सकता है, तो एक न्यूड कैंप था जहां प्रभुपाद को इनविटेशन दिया कि आप आइए लेक्चर देने। तो प्रभुपाद ने वो इनविटेशन स्वीकारा, गए, अकेले गए प्रभुपाद। अभी वहां गए तो वो पूरा माउंटेन्स में रहते थे, उन्होंने कारें वगैरह भेजी और प्रभुपाद गए, प्रभुपाद को पता नहीं था वो न्यूड कैंप है। प्रभुपाद गए वहां, देखा सारे लोग नग्न है, स्त्री और पुरुष सब नग्न है, अभी इनको क्या नौकरी, क्या कीर्तन करना, क्या प्रवचन देना। तो प्रभुपाद ने फिर भी बोला आप इस शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, ये हो, प्रभुपाद ने बोला। और फिर प्रभुपाद ने सोचा कि क्या, तो प्रभुपाद ने पूछा आप लोगों के जीवन का गोल क्या है, उन्होंने कहा आलू उगाना, क्योंकि वो दिन भर क्या करते थे, नग्न रहते थे और आलू उगाते रहते थे, खेती करते रहते थे। तो प्रभुपाद जब निकलने लगे तो उसमें से तीन जो यूथ थे उन्होंने कहा हम भी आपके साथ आना चाहते। प्रभुपाद ने कहा लेकिन कपड़े पहनने पड़ेंगे। प्रभुपाद उनको लेकर आते हैं, और वो तीन अच्छे भक्त बनते हैं। तो मतलब आप सोचो, गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रभुपाद ने जो कार्य किया है ना, आचार्यगण कहते हैं न भूतो न भविष्यति, ना पहले किसने किया है ना आगे कोई कर सकता है, ऐसा कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया है। अभी हम वास्तव में मीठे फल खा रहे हैं, प्रभुपाद ने सारे कड़वे फल खा लिए हैं और हमें क्या जूस दिया है, लेकिन फिर भी हमें जूस हमारे गले के अंदर से जाने रहा है, वो अटका हुआ है, क्योंकि हमने जूस से पहले कुछ और चीजें भी खा के आना रखी हुई बंदर की तरह। तो फिर प्रभुपाद ऐसे एक बार गए मुकुंद, मुकुंद थे ना, मुकुंद गोस्वामी है, वो अपना बुक मिरेकल ऑन 22nd एवेन्यू में लिखते हैं, अभी नया बुक रिलीज हुआ है, तो उसमें वो लिखते हैं कि एक बार प्रभुपाद एक इंडियन फैमिली के घर गए, जहां ठंड ऐसे ठंड के दिन थे, तो इंडियन फैमिली बहुत बातें कर रही थी और प्रभावित हो गई। फिर उनकी जो पत्नी थी उन्होंने बहुत बड़े दो डेट्स दिए उनको, खजूर होता है ना, लेकिन बड़े कभी नहीं देखे थे प्रभुपाद ने, इतने बड़े डेट्स दिए, सिल्वर जो रैप होता है उसमें पैक करके दिए। तभी तो नया नया वो इस्कॉन का न्यूयॉर्क में पहला टेम्पल खोला था छोटा सा। अभी मुकुंद हाँ जो गाड़ी चला के ले गए थे प्रभुपाद को, जब आए वापस प्रभुपाद के साथ, तो प्रभुपाद ने सोचा रही भूख लग रही है अभी, उन्होंने क्या दिया देखता हूँ, खोला था उसमें दो खजूर थे। तो प्रभुपाद ने एक खजूर सोचा बाद में लेता हूँ, और एक खजूर को खाया, इतनी बड़ी खजूर थी उसको आधा खाया और आधा उनको दिया। किसको? मुकुंद, शिष्य है ना, तो गुरु को शिष्य को क्या करना चाहिए, गुरु का महाप्रसाद खाना चाहिए। अभी उसके जीवन में पहली बार था, उनको पता नहीं कि किसी का उच्चिष्ट खाना, अभी जनरली होता है ना किसी का झूठा नहीं खाते। अभी ये मुकुंद ने लिया, लिया जैसे कि फ्रेंड होता है ना, उसने दिया तो खा लेता, लिया खाया, आधा खाया आधा पैसे प्रभुपाद के हाथ में दिया। अभी प्रभुपाद देखने लगे, ऐसे देखा तो उसको कुछ पता नहीं, भगवान ने कुछ प्रेरणा दी होगी, फिर ले लिया और पूरा खा लिया। तो प्रभुपाद वास्तव में कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, गुरु को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क उठाया है, और ऐसे ऐसे लोगों के संग में वो रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्यों को उन्होंने स्वीकारा है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन अभी पूरा जो तात्पर्य है ये उसी के बारे में प्रभुपाद ने लिखा है, क्या कि वास्तव में आध्यात्मिक जीवन का या आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करने का ये रहस्य है कि गुरु की तुष्टि, आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता। और आध्यात्मिक गुरु ये जो ज्ञान हमारे हृदय में तभी प्रेरित कराते या होता है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब हमारे अंदर शिष्टता होगी, सदाचार। सदाचार क्या है वो जानना चाहिए। दूसरा क्या है? विनीत भावना, विनम्रता की भावना होनी चाहिए। तीसरी, हम सदैव आज्ञाकारी होने चाहिए, आज्ञाकारी भावना, जो हमें कहा जाए उसको गंभीरता से स्वीकार करे, आज्ञा का पालन करे। और चौथा है आत्म संयमी। तो ये चार गुण होंगे तो प्रभुपाद ने कहा वास्तव में गुरु की कृपा ऐसे शिष्य के ऊपर होगी, और उसके अंदर ये भावना इस विधि का वो पालन करना चाहिए। परिप्रश्न सेवया तद विधि प्रणिपातेन शरणागति आदि का इन जब हम पालन करेंगे तो आध्यात्मिक गुरु की जो कृपा है वो स्वाभाविक रूप से हमारे ऊपर हो सकती है, और वो व्यक्ति महाभागवत बन सकता है, महान भक्त बन सकता है, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा तभी प्राप्त कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को नमो महावदन न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। तो महाप्रभु के आंदोलन में सब कुछ महा है, वो स्वयं महाप्रभु है, फिर उन्होंने महामंत्र दिया है, और फिर महाप्रसाद भी दिया है, और जितने भी भक्त है उनके सारे महाभागवत है। तो महाप्रभु के आंदोलन में सब कुछ महा है, तो हमें महान भक्त बनने का मौका है। जब हम महान ऐसे वैष्णव की, भक्तों की, गुरु की सेवा करते हैं विनम्रता और आज्ञाकारिता के भाव से, तो सरलता से यह आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में विकसित हो जाते हैं। महाप्रभु की इतनी यूनिकनेस है, कृष्ण सो कहते हैं आप मेरे पास आओ तभी मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, महाप्रभु कहते तुम आने की भी आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जैसे महाप्रभु का गुण बादलों की तरह है, बादल आप थोड़ी बादलों के पास जाते हो पानी लेने, जाते हो क्या? नहीं, बादल आपके पास आता है, पानी का वर्षा का वो प्रभाव छोड़ देता है आपके ऊपर, इतना अनलिमिटेड वाटर। तो वैसे ही महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु आपके पास आते हैं और वो कृपा का वर्षा करते हैं। तो महाप्रभु की कृपा यही है कि उनका ये जो आंदोलन है उसको हम समझे अच्छे से प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से और फिर कार्य करना सोचे, आध्यात्मिक कार्य में फिर लगे। इस प्रकार से इस तात्पर्य का यही सारांश है, यश प्रसादा भगवत प्रसादो, यश प्रसादा यश अप्रसादा न गति कुतोपि। आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही हमें कृपा प्राप्त हो सकती है कृष्ण की, उनकी कृपा के बिना हमारा जो जीवन है निरर्थक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।